ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
கிந்து லஜ்ஜா பி ஆகே ஜாக்கியா பந்தன் கா காரணம் பண்தா ஹை. கியோங்கி கோய் கீர்த்தன் ஹோ ரஹே, பஜன் ஹோ ரஹே, கோய் படா வியக்தி, ஹம் ஜாக்கே கீர்த்தன் மே பேட்டே தோ லோக் க்யா கஹேங்கே, உஸ்கே அந்தர் லஜ்ஜா ஆ கயி. தபே நா வோ பகவான் கா நாம் ஸ்மரண் கர் சுன் சக்தா ஹை, நா சத்சங் சுன் சக்தா. தோ இஸ்லியே லஜ்ஜா பி பந்தன் கா காரண் மானா ஹை, பாஷா மானா ஹை. और भया द्वितीया द्वय भयम भवती, श्रुति बार बार बोल रहे बृहदार ने, ये भय है. भय क्यों हो रहे सबसे, सभी व्यक्ति को भय हो रहे, क्यों हो रहे भय? सबसे भय है मेरा जो अस्तित्व है, सत्ता है, समाप्त होगा, अर्थात मैं मर जाऊं, ये सबसे बड़ी भय है सबके लिए. அப்பா ஜோ அஸ்தித்வ ஹே, சத்தா ஹே, கோ ஜானே கா பயா. இஸ்கா மத்லப் அப்பா அஸ்தித்வ சத்தா கோ நஹி சமஜ ரஹே ஹம். ஷரீர் கோ ஹி அப்பா அஸ்தித்வ மான் ரஹே, உஸ்கோ ஹி சத்தா மான் ரஹே, தபி பயா ஹோ ரஹே. யதி ஆப்கோ ஏக் பார் நிச்சய ஹோ கயா, மை த்ருஷ்டா ஹூன், சாட்சி ஹூன், யஹி மேரா சத்தா ஹை, உஸ்கே பாத் பயா நஹி ஹோகா. क्योंकि कभी खो नहीं सकता है, वो आपका स्वरूप है. इसलिए सबसे बड़ा भय है मृत्यु का. मान भी लीजिए मृत्यु से भयभीत भी हो गया, क्या मृत्यु छोड़ के जाएगा क्या? नहीं छोड़ सकता है, वो अपना काम ही करेगा. तो इसलिए जो भय है ये भी बंधन का कारण है, पाशमाना है. चौथा पाशमाना है शंका. हर वस्तु में जो शंका देख रहे, शास्त्र बता रहे वहां भी शंका, अतः संशय एक प्रकार से. ये भी क्या है पाश, जहां जिसके अंदर जो अधिक शंका, शंका होना चाहिए किंतु जिज्ञासा होना चाहिए, शंका नहीं. जिज्ञासा तो होना चाहिए, जानने के लिए आपके अंदर एक उत्कंठता है, ये अवश्य होना चाहिए. और यदि शंका भी हो गया, समाधान के लिए होना चाहिए, शंका के लिए शंका नहीं. कोई भी आपके अंदर यदि शंका अथवा जिज्ञासा उठ गई, समाधान के लिए, खोजने के लिए साधक अवस्था में, तो ये शंका भी प्रतिबंधक माना है पाश. जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब रक्षा करने की इच्छा. हम रक्षा करना चाहते, अपना सुरक्षा करना चाहते हैं. किसकी सुरक्षा कर रहे? शरीर की है ना. शरीर को आत्मा माना है तभी हम सुरक्षा में लगे हैं. और यदि आप उस तत्व को जान लिया, मैं शरीर नहीं, बाद में सुरक्षा करने के लिए भी आप प्रयत्न नहीं, क्योंकि सबका सुरक्षा करने वाला वही है. हम लोग बाहर दौड़ रहे हैं इसलिए सुरक्षा करना पड़ता है. जिस समय में आप अंदर दौड़ेंगे वो सुरक्षा अपने आप हो रही है. एक बार बहुत साल पहले बिहार में एक बार भूकंप आ गया था, तो वहां एक संत भी थे. भूकंप आने पर सब लोग दौड़ते, भागो 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 करके, तो सब लोग भाग गए, संत तो बैठे रहे. बाद में सबने देखा संत है क्या, मरे है करके. आगे देखा संत बैठे, सभी ने कहा महाराज हम लोग तो भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? उन्होंने कहा मैं भी भागा था, तो आप तो बैठे कहां भागे थे? तो मैं अंदर भाग गया था, आप लोग बाहर भाग गए थे. अर्थात अपने स्वरूप में भाग गया था, आप लोग दृश्य की ओर भाग गए थे. बस यही अंतर है. यदि हम बाहर भाग रहे तभी रक्षा करने की इच्छा करें, अंदर यदि जावे तो वहां जुगुप्सा का अवश्य नहीं। इसलिए जुगुप्सा है पंचमी, ये पांचवा पाशमाना है। कुलम बोलते मैं अमुक कुल का, एक कुल है किसको लेकर, स्थूल शरीर को लेकर, क्या सूक्ष्म शरीर में कोई कुल है, उसका कोई कुल नहीं है, कारण शरीर का भी कोई कुल नहीं है, किंतु दृष्टा में कहां से कुल आएगा। बोलते मैं उत्तम कुल का हूं, मैं श्रेष्ठ कुल का हूं, ये तो स्थूल शरीर को लेके हो रहा है, जो बाहर देख रहे ढांचा उसका धर्म है, सूक्ष्म शरीर का अभी नहीं। और शीलम, शील का मतलब स्वभाव, ये सूक्ष्म शरीर को लेके आता है, ये भी पाश है। और जाति रष्टा, जाति अभी जाति भी क्या है, स्थूल शरीर को लेके होता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं अमुक हूं करके, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, सूक्ष्म शरीर में भी ना पुरुष स्त्री का भेद नहीं, किंतु कुछ ऐसा भी संप्रदाय है मानते हैं जो पुरुष पुरुष ही बनेगा, स्त्री स्त्री ही बनेगा, ऐसे ही लोग हैं, बहुत प्रचार भी करते हैं, जो पुरुष है कभी स्त्री नहीं बनेगा, जो स्त्री शरीर है कभी पुरुष नहीं बनेगा, ऐसा है वो अलग मानते हैं, किंतु स्त्री और पुरुष धर्म है स्थूल शरीर का है, सूक्ष्म शरीर में भी नहीं, कारण शरीर में भी नहीं, तो आत्मा में कहां से आएगी जाती। इसलिए जो आठ पाशमाना है, घृण लज्जा भय शंका जुगुप्सा चेति पंचमी, कुलम शीलम तथा जाति रष्टो पाश प्रकेदिता, ये आठ पाश है। और पाशबद्धा भवे जीव, ये आठ पाशों से हम बंधे हैं, इसलिए जीव है। और पाश मुक्त सदाशिव, ये पाश से जो मुक्त है वो सदाशिव है, वही आत्मा है, वही दृष्टा है, इसलिए यहां संकेत कर रहे आत्म शब्द के द्वारा। और आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती है, वो क्रिया का विषय नहीं है। संसार में आप जो भी पदार्थ प्राप्त करते हो किसी ना किसी क्रिया के द्वारा, जो क्रिया चार प्रकार से माना है, एक जो क्रिया है उत्पत्ति क्रिया मानते हैं, उत्पत्ति क्रिया के द्वारा किसी वस्तु को आप उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए मिट्टी के द्वारा घट को आपने उत्पन्न किया, धागे के द्वारा आपने पट को उत्पन्न किया, ये जो घट है उत्पाद्य है। क्यों उत्पाद्य है? कुलाल ने मिट्टी के द्वारा उत्पत्ति क्रिया के द्वारा घट को उत्पन्न किया, इसलिए घट को कहते हैं उत्पाद्य। झूला ने धागे के द्वारा उत्पत्ति क्रिया के द्वारा पट को उत्पन्न किया, इसलिए उत्पाद्य है वो। कि आत्मा को किसी ने उत्पन्न किया? आत्मा को कोई उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए आत्मा में उत्पत्ति क्रिया भी नहीं, वो उत्पाद्य नहीं। दूसरी एक क्रिया माना है आप्तिक क्रिया, आप्ति के द्वारा होता है, उसको आप्या कहते हैं। जैसा कोई व्यक्ति जा रहे गांव की ओर, अभी जो गांव की ओर जाने के बाद गांव उसको प्राप्त होता है, तो गांव जो प्राप्त हो गया गमन के द्वारा उसको बोलते हैं आप्या। अथवा गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त कर रहे, गुरु ने दे दिया शिष्य को, ये हुआ आप्तिक क्रिया के द्वारा प्राप्त है, आप्य कहते हैं। जैसे आप लोग सत्संग में आ गए, वहां से यहां पहुंच गए, सत्संग में जो पहुंच गए वो आप्य है, आप्तिक क्रिया के द्वारा प्राप्त। क्या आत्मा को ही प्राप्य है? प्राप्य उसी को ही होता है अप्राप्त वस्तु की। अप्राप्त वस्तु है उसके यहां प्राप्त कर सकते हैं। गांव पहले आपको प्राप्त नहीं था, आपसे दूर था वो, आप चलते गए तभी आपको गांव प्राप्त हो गया। वस्त्र आपके पास नहीं था, आपने खरीद किया तभी आपको प्राप्त हुआ। क्या आत्मा कोई ऐसा है? नहीं, वो तो सर्वत्र है, इसलिए वो प्राप्य नहीं हो सकता। पहले भी एक बार बताया था मैं, आत्मा को भी प्राप्य मानते हैं, उसको आत्मा दर्शन हो गया, आत्मा को प्राप्त किया, तत्व ज्ञान हुआ करके बोलते तो है, किंतु वो प्राप्तस्य प्राप्ति है। प्राप्तस्य प्राप्ति अलग है, अप्राप्ति की प्राप्ति अलग है। पहले भी एक दिन बताया था, दोनों को भेद करके बताया था। जहां हमारे पास अभाव है, उस अभाव को हटाना ये अप्राप्ति की प्राप्ति है। दृष्टांत भी दिया था, जिसके पास मोबाइल नहीं है, अर्थात मोबाइल का अभाव है, उस अभाव को हटा दिया आपने, मतलब मोबाइल आपको प्राप्त हो गया। पहले अभाव था और अभाव को हटाया, मतलब क्या, मोबाइल को आपने प्राप्त किया। तो अभाव को हटाना ये अप्राप्ति की प्राप्ति है, और अज्ञान को हटाना ये प्राप्ति की प्राप्ति है। वस्तु आपके पास है किंतु आप भूल गए, जो भूल गए, जो अज्ञान है उसको हटाने से जो वस्तु आप दर्शन करते वो प्राप्तस्य प्राप्ति। इसलिए आत्मा कोई अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं, सदा प्राप्त है। तो आप्य भी नहीं, दूसरी क्रिया भी उसमें नहीं। तीसरी क्रिया माने संस्कार, या संस्कार किया जाता है, जो पूजा पाठ करते हैं, अपवित्रम वा अपवित्रम करके जल छिड़कते पवित्र करते हैं। संस्कार या क्रिया भी दो माना है, एक गुणादान और दोष निवृत्ति। संस्कार करके दोष को भी हम हटा सकते हैं और उसमें गुण का भी आरोप कर सकते हैं। जैसा सामने दर्पण है, उसके ऊपर धूल जमा है, आपने क्या किया, उसका संस्कार कर दिया। संस्कार का मतलब गीले कपड़े के द्वारा उसको फूंक दिया। अभी वो जो दर्पण में दोष था, उस दोष को आपने हटा दिया संस्कार क्रिया के द्वारा। और एक होता है यज्ञ में, जहां पूर्णाश बनाते हैं, जल छिड़कते हैं, भाले धान को आप धो के अच्छा भले सफाई किया, पुनः जल छिड़कते हैं। अथवा आप संध्या हो अथवा पूजा में बैठते हो, पंडित जी आपके ऊपर जल छिड़कते हैं, आप अपवित्रम पवित्रम, तो नहा के तो आए ही आप दोबारा, अर्थात आपके ऊपर एक संस्कार कर रहे, गुणादान कर रहे। ये जो चाहे तो गुणादान हो अथवा दोष को हटाना हो, आत्मा में नहीं, क्योंकि उसमें कोई गुण भी नहीं ना कोई दोष नहीं, तो तीसरी क्रिया भी उसमें नहीं। और चौथी क्रिया है विक्रिया मानते हैं, विकृति। जैसा दूध से विकृत होकर दही बन गया, ये विकृति क्रिया मानते। वैसा परमात्मा विकृत होकर जगत बन गया ऐसा बात में नहीं। इसलिए चारों क्रियाओं से रहित है उसी को ही आत्मा बता रहे हैं। तो भगवान भाष्यकार जी ने यहां बताया, स्पष्ट बता दिया, सर्व संसार रहिता, संसार के जितने भी जो धर्म है उससे रहित है। और आत्मा शब्द उत्पत्ति के अनुसार भी यह संकेत दिया भगवान भाष्यकार, तीन धातु से बन सकता है। एक तो सर्वत्र व्यापक आप धातु है, सभी में व्याप्त है, तो आप धातु से भी आत्मा की उत्पत्ति होती है। और अद धातु से भी बनता है, सारा जगत को खाने वाला वही है। खाने का मतलब चबा करके नहीं खा रहे, प्रलय काल में सबको लया कर रहे, इसलिए अद धातु से भी बनता है। और एक अत धातु से बनता है, सर्वत्र निरंतर विद्यमान है सत्य रूप से, वो आत्मा है। और वो आत्मा कैसा है, सद और असत से भिन्न है। ठीक है, असत से तो भिन्न हो सकता है, सत से भिन्न कैसा होगा? गीता में भी सुना सद असत भिन्न है, वो सत भी नहीं है असत भी नहीं। तो सद और असत का तात्पर्य वहां कार्य और कारण में। सत का मतलब है कार्य, असत का मतलब है कारण। कार्य को सत क्यों कहा दिया, कारण को असत क्यों कहा? व्यवहार तो हम करते हैं, विचार नहीं करते। जैसा गर्मी के समय में आपने खेती देखा, बिल्कुल सूखी खेती, कुछ है नहीं उसमें, बाद में बारिश आ गई, 7-8-10 दिन के बाद हरे घास आ गए उसमें एकदम। आप कहते अरे पहले यहां कुछ भी नहीं था, अभी इतने घास आ गए। देखिए पहले कहते कुछ भी नहीं था, असत था, अभी घास दिख रहे। अभी जो दिख रहे जो घास, एक कार्य है, उसको आप सत मान रहे। पहले कुछ भी नहीं था असत बता रहे, क्या कुछ नहीं तो घास आए कहां से? इसका मतलब वहां कोई ना कोई कारण था, दिख रहे नहीं। जो दृष्टि का विषय नहीं हो रहे उसको हम असत कहते। हमारे दृष्टि का विषय नहीं बन रहे, असत का मतलब वहां अभाव नहीं, एक अभाव होता है, अभाव नहीं था। यदि अभाव होता तो खेती में इतना घास कहां से आ गया? वहां असत का मतलब है हमारा दृष्टि का विषय नहीं था। बाद में जो दृष्टि का विषय बन जाता है तभी हम सत कहते हैं। इसलिए सत का मतलब है कार्य, असत का मतलब है कारण। तो कार्य कारण से भी रहित है, वो कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है। इसको यहां बता रहे आत्मा वा इदम, व इदम शब्द के द्वारा ये दिख रहे जो जगत है, नाम है रूप है कर्म है। नाम रूप कर्म ही जगत माना है, मुख्य रूप से नाम और रूप माना है। किंतु बृहदारण्यक में वह तीन बताया, नाम रूप कर्म, यही जगत है, इससे अतिरिक्त कोई जगत नहीं है। हमारे शरीर में भी देखे ये तीन है, नाम और रूप और कर्म। तो नाम रूप आत्मक जो जगत है, पहले केवल आत्मा ही था। तो इसका मतलब क्या है, ये नाम रूप से दिख रहे जगत अभी कार्य रूप से, वो पहले कारण में ही था। जैसा वटवृक्ष है बरगद का पेड़, उसमें आप बीज देख सकते हैं, उसका श्वेत केतु को वहां पिता ने समझा दिया था। उन्होंने कहा, हे पुत्र, उस सामने जो पेड़ दिख रहे उसका एक फल लेके आओ। वो फल लेके आ गए, फल को तोड़ दे दो। तोड़ दिया, क्या देख रहे पिताजी? छोटे छोटे बीज जैसा देख रहे, धाने सरसों जैसा। उसको भी तोड़ दे दो। क्या देख रहे? कुछ नहीं देख रहे। तभी कहते हैं, ये जो वृक्ष देख रहे ना, इतना बड़ा, इससे ही उत्पन्न हुआ है। इतना बड़ा वट वृक्ष है, उससे उत्पन्न हो रहे। वैसे ही अर्थात ये वृक्ष पहले कहां था? उस बीज में था। बीज में यदि ना होता तो कहां से आया वो? किंतु बीज में हम देख नहीं सकते, कारण में कार्य को हम नहीं देख सकते। इसलिए यहां बता रहे, ये सारा जो जगत है नाम रूप से, पहले कारण रूप में था, आत्मा रूप में। यही बता रहे, आत्मा वा इदम एकः एव, एक भी बता रहे, एव भी बता रहे। उस आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं था। उसके बाद नाना किंचन मिशत, उससे सिवा कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी। यदि किसी के मन में ये हो सकता है, अकेला जो आत्मा है जगत को कैसा बना सकता है? जैसा कोई मकान बना रहे, बनाने वाला बाह्य पदार्थ को ले रहे, ईंट है, पत्थर है, सब चाहिए, सीमेंट। परमात्मा ने जगत बनाने के लिए कहां से लाया होगा? इसलिए विवर्त है। एक मकड़ी बना सकता है बिना आश्रय से, अपने आप जाला बना देती है। अभी देखिए, जाला बनाने के लिए उपादान भी है, निमित्त भी है। एक जादूगर बना सकता है इतना जादू, वो तो महायोगेश्वर है। इसलिए वो बाह्य किसी का आश्रय नहीं करता है। इसलिए यहां बता रहे, नान्यत किंचन अमिशत, और कुछ भी सक्रिय वस्तु नहीं। स ईक्षत, बाद में उन्होंने ईक्षण किया। ईक्षण का मतलब विचार, क्योंकि जैसा कोई भी मकान हो अथवा बड़ा बंगला बनाते हैं, तीन बार बनाते, एक बार नहीं, सबसे पहले अपना मन में बंगला बनाते, उसके बाद कागज में बनाते नक्शा, उसके बाद जमीन में बनाते। इसलिए परमात्मा को ये जगत रूप बंगला बनाना है, क्योंकि रहने वाले तो हम लोग हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा, ये लोगों को कैसा बंगला बनावे, और उसके बाद अलग अलग घर भी बनाना पड़ेगा, शरीर, ये सब उन्होंने सोचा। क्यों सोचा? जो कमाया था हम लोग, वो पड़ा था उसके साथ। कमाना मतलब पुण्य और पाप, उसके अनुसार उन्होंने, इसलिए सोचना पड़ा उसको। इसलिए यहां बता रहे, सा एक्षता, आगे का विचार हम लोग कल का। ओम शांति 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 शांति।